हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनस्वी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर आ गई हो, या फिर विराज को कोई खतरा महसूस हुआ हो तो उसने खुद ही लोकेशन चेंज कर दी होगी। अनय ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन ऐसी जगह पर आखिर वो करना क्या चाहता होगा? ये जगह तो कोई भी गलत काम करके छुपने के लिए बहुत अच्छी है। मनस्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब ये तो वही जाने और उसका शैतानी दिमाग। अनय को जैसे ही कुछ याद आया, वो चहकते हुए बोला, लेकिन वो कहाँ पर है, इस बारे में तो हम पता लगा सकते हैं ना? मनस्वी ने भी हाँ में सिर हिलाकर रजामंदी देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, देखो उसका मोबाइल लोकेशन। अनय ने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया और उसमें कुछ करने लगा। मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो बोला, चलो कार में बैठो, यहाँ से थोड़ा आगे की ही दिखा रहा है लोकेशन। एक मिनट, उसका फोन शायद अब स्विच ऑफ है। मनस्वी ने कार में ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, जरूर उसे इस बात का शक हो गया होगा, इसीलिए उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन चलो, जहाँ तक लोकेशन दिखा रहा है वहाँ तक तो चलते हैं। अनय भी मोबाइल स्क्रीन पर देखता हुआ उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया और उसने मनस्वी को डायरेक्शन देने शुरू किए। वो दोनों ही वहां से एक तरफ आगे बढ़ गए। हॉस्पिटल में नदीम के साथ आदित्य हॉस्पिटल में ही था। सुनैना अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी, जहां पर डॉक्टर उसकी इंजरी पर ट्रीटमेंट कर रहे थे। कुछ देर बाद अपना पूरा काम खत्म करके अरविंद भी वहां पर आ गया। वो आगे आकर नदीम से बात करने लगा और उसने नदीम को विराज के बारे में बताया जो कुछ उसे पता चला था, और उसने विराज को कहां पर कैद करके रखा है ये भी उसने नदीम को बताया। लेकिन आदित्य ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो कुछ भी समझने, पूछने, जानने की हालत में ही नहीं था। वो दोनों आदित्य के सामने खड़े होकर आपस में बात ही रहे थे, और तभी कॉरिडोर में एकदम से दौड़ते हुए तीन चार लोग वहां पर आते हैं। उनमें से एक नैना थी, उसके साथ स्वीटी, विवान और एक बॉडीगार्ड भी था। नैना आदित्य के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, ये सब क्या हुआ मेरी सोनू के साथ? उसकी ऐसी हालत क्यों है? वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच क्यों है? बताओ, जवाब दो मुझे। नैना ने इस तरह चिल्लाते हुए आदित्य से पूछा। आदित्य, जो पहले ही इतने ज्यादा गिल्ट में था, उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि उसे तो हमेशा से यही लगता था कि अगर वो सुनैना के करीब गया या फिर सुनैना हमेशा उसके साथ रही तो सुनैना को जरूर कुछ हो जाएगा, और बाकी लोगों की तरह वो भी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि वो अनलकी है। और आज अपना वो डर, वो सब कुछ उसे अपनी आंखों के सामने एकदम सच होता नजर आ रहा था। और ऊपर से नैना के ये सवाल, ये इल्ज़ाम भी उसे परेशान कर रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में ये सब कुछ उसी की ही गलती है। लेकिन तुरंत ही वो कुछ बोल नहीं पाया और सोच में पड़ गया। इतनी देर से रोने की वजह से आदित्य की आंखें बहुत लाल थीं। उसने सिर उठाकर नैना की तरफ देखा और लगभग रोते हुए कहा, तुम्हें पता है वो असली हीरो है, उसने मुझे बचाया, नहीं तो आज उसकी जगह मैं वहां ऑपरेशन थिएटर में होता। काश कि मैं ही होता जिसे ये चोट आई होती। मैंने सबको निराश किया, मैं उसे बता नहीं पाया। सॉरी, आई एम सच अ लूजर, आई फेल्ड। ऐसा पार्टनर मैं अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया उस सनकी आदमी से। आई एम रियली सॉरी नैना, बट मुझे पता है मैं ही अनलकी हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन बस अब और कुछ भी नहीं होगा, किसी को मेरी वजह से, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। हाँ, सुनैना की लाइफ से बहुत दूर, कभी उसके सामने नहीं आऊँगा, तो फिर वो भी सिर्फ रहेगी। हाँ, यही सही रहेगा सबके लिए। आदित्य की ऐसी बातें सुनकर नैना को बहुत बुरा होगा, और वो समझ गई कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही सुना दिया है आदित्य को, और जो कुछ भी हुआ उसमें आदित्य की गलती नहीं होगी। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही की होगी सुनैना को बचाने की, और वो जानती है कि आदित्य सुनैना से कितना प्यार करता है। इसलिए आदित्य के जाने की बातें सुनकर वो उसे समझाते हुए बोली, नहीं आदित्य, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करती है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और सॉरी, मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गई इमोशनल होकर, बट मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम बिल्कुल भी अनलकी नहीं हो, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। आदित्य अपनी ही धुन में बोला, नहीं, तुम सही कह रही थीं। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ, सिर्फ मैं और कोई भी नहीं। मुझे वो प्लान भी नहीं बनाना चाहिए था विराज को पकड़ने के लिए। मुझे सुनैना को घर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। नैना ने इस दार उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए उसे पूरी बात समझाने की कोशिश की। नहीं आदित्य, चुप करो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और खुद को ब्लेम करना बंद करो। इसकी बदली तुम्हें उसे सजा दिलवानी ही है जिसने सुनैना की ऐसी हालत की है, और इसके अलावा तुम कुछ नहीं सोच सकते, उसे छोड़कर जाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर तुम चले गए तो जरूर सुनैना कभी जिंदा नहीं बचेगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और इसीलिए ही उसने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारी जान बचाई है। ऐसे में तुम उसी से ही दूर जाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? नैना की ऐसी बातें सुनकर आदित्य पूरी तरह से तो कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन उसकी तरफ देखकर सोचने पर थोड़ा मजबूर हो गया। और तभी स्वीटी ने भी आगे आते हुए उसके दूसरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ हाँ भाई, नैना दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी को इस वक्त सिर्फ आपकी जरूरत है, और बस आप हिम्मत रखिए, इस तरह से खुद को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। आदित्य ने उन दोनों की ही बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसी तरह सोचते हुए वहां पर बैठा रहा। कुछ मिनट के बाद वहां बेंच से उठकर नैना थोड़ा सा आगे आई और उसने कांच की खिड़की से ऑपरेशन रूम के अंदर झांकते हुए देखा। सुनैना अभी अनकॉन्शियस वहां बेड पर लेटी हुई नजर आई और उसके आसपास डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ भी था। उन लोगों के वहां पर आने के बाद नदीम और अरविंद वहां से थोड़ा साइड में हटकर एक साथ खड़े हुए थे और वहां पर हो रहा सारा ड्रामा देख रहे थे और उनकी बातें भी सुन रहे थे, लेकिन उन दोनों ने ही बीच में कुछ नहीं बोला। नैना वहां दरवाजे के सामने से थोड़ा सा हटी, तभी विवान भी उसके पीछे आ गया, क्योंकि नैना और स्वीटी के साथ वही वहां पर हॉस्पिटल आया था। क्योंकि अक्षत फिलहाल वहां पर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो जो प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से वो नैना और उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसके साथ नहीं है, और विवान एज अ को एक्टर नैना के साथ आया हुआ है। इसके अलावा वहां पर मीडिया रिपोर्टर के भी वहां हॉस्पिटल में आने पर रोक लगी हुई थी और सब कुछ अरविंद ने हैंडल किया है, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज को लेकर वो कोई भी न्यूज फिलहाल मीडिया में नहीं आने देना चाहता था और यही उन दोनों की सिक्योरिटी के लिए बेस्ट होगा। नैना वहां पर साइड में आकर अपने चेहरे पर हाथ रखकर अपने आंसू छुपाते हुए रो रही थी। विवान ने उसे इस तरह देखकर समझाते हुए कहा, अभी तुमने आदित्य से कहा ना खुद, फिर क्यों इस तरह से रो रही हो? तुम्हें रोते देखकर सोचो आदित्य पर क्या बीतेगी, वो तो और कमजोर पड़ जाएगा। नैना ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही, लेकिन ये सब क्यों हुआ मेरी सोनू के साथ? वो तो कितनी अच्छी है, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती है, तो फिर क्यों क्यों आज वो ऐसी हालत में है? इतना बोलते हुए नैना के फिर से आंसू निकल आए, तो विवान ने उसे साइड हग करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और पीछे से स्वीटी ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। वो भी दरवाजे पर लगे हुए कांच से सुनैना को देखने के लिए आई थी, लेकिन उसने नैना को इस तरह से रोते देखा तो फिर उसके पास आ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से बाहर निकले तो आदित्य सबसे पहले ही उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और ना डॉक्टर से कुछ भी पूछा, लेकिन फिर भी डॉक्टर समझ गए कि वो क्या जानना चाहता है। और उन सबकी तरफ देखते हुए डॉक्टर ने कहा, अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन सिर की चोट बहुत गहरी है, हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्हें कब हो जाएगा, और वो कोमा में भी जा सकती हैं। आप सब हिम्मत बनाए रखिएगा। इतना बोलते हुए डॉक्टर वहां से चले गए और उनकी ये बात सुनकर वहां पर खड़े आदित्य, नैना, स्वीटी सभी परेशान हो गए। डॉक्टर की ये बात सुनकर आदित्य अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मेरी सुनैना नहीं, कैसे वो कोमा में नहीं जा सकती, नहीं, उसे मेरे लिए ठीक होना होगा, बिल्कुल ठीक, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, सोना। आदित्य ने एकदम पागलों की तरह जोर से सुनैना का नाम लेकर चिल्लाया, सर, आदित्य, संभालो खुद को, वो ठीक हो जाएगी। एक तरफ से नदीम और दूसरी तरफ से विवान ने आकर आदित्य को पकड़ते हुए कहा, क्योंकि वो रोते हुए वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठ गया था और अपना सिर झुकाकर वहीं रो रहा था। वहां से निकलने वाले बाकी सारे स्टाफ और विजिटर्स आदित्य की तरफ ही देख रहे थे। आदित्य ने फिर से अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी सोना ठीक हो जाए बस, मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। उसे ऐसे बर्ताव करते देखकर स्वीटी को भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है कि भगवान से प्रार्थना करने के अलावा इस वक्त वो फिलहाल कुछ और नहीं कर सकती। विवान और नदीम ने उसे जैसे तैसे समझा बुझाकर वापस बेंच पर बिठा दिया, लेकिन आदित्य किसी की भी तरफ देखकर उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा था, इसलिए सभी ने उसे थोड़ा टाइम दिया और उससे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद ये बात अरुण को जब पता चली तो वो भी भागते हुए वहाँ पर हॉस्पिटल में आया, और उसके साथ सुनैना के पापा और उसकी सौतेली माँ भी थीं। उन लोगों को आदित्य शादी के बाद से आज पहली बार ही देख रहा था, लेकिन वो लोग उसके लिए इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते थे, और उसे पता है वो सब बस फॉर्मैलिटी अदा करने के लिए ही वहाँ पर हॉस्पिटल में आए हैं, और स्वीटी ने ही अरुण को इस बारे में बताया था। उस वक्त वो घर पर ही था, इसलिए उसके निकलने से पहले जब उसके मम्मी पापा ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो ना चाहते हुए भी अरुण को इस बारे में उन्हें बताना पड़ा, और अरुण की बात सुनकर वो दोनों भी उसके साथ ही वहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए। अरुण उन्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उनके साथ यहाँ पर हॉस्पिटल आ गया। क्रमशः